जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बन चारी, यमुना तीरा बन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। पाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद्वाइन ग्रीस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविशिष्कोन फाउंडर आचार्य शिव दि होलवर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या छह। सब लोग निकालिए बोलिए। न चेतन विद महाकतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु, याने विहत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। न चेतन विद महाकतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु, याने विहत्वा न जिजीविषाम देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र न चेतन विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र शब्दार्थ बोलिए न नहीं च भी एतत् यह विद्मः हम जानते हैं कतरत जो नह हमारे लिए गरीयः श्रेष्ठ यद्वा अथवा जयेम हम जीत जाएं यदि यदि वा या नह हमको जयेयुः वे जीतें यान जिनको एव निश्चय ही हत्वा मारकर न कभी नहीं जिजी विषामः हम जीना चाहेंगे ते वे सब अवस्थिताः खड़े हैं प्रमुखे सामने धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र अनुवाद मेरे पीछे बोलिए हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालें मेरे साथ बोलिए ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकायं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलम् श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्लोक फिर से निकालिए, श्लोक समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं, ना चा एतद विद्मः ततरन्नो गरियो, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। यदवा जेम यदि वानो जेयो, हम उनको जीतें या वे हमको जीतें। अर्जुन के हाथ में दोनों हैं, अर्जुन चाहे तो जीत भी सकते हैं, अर्जुन चाहे तो हार भी सकते हैं। जो व्यक्ति जीत सकता है वो हार भी सकता है, है कि नहीं? जीतने वाला अगर हारना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि लेकिन क्या उचित है हमारे लिए, हम उनको जीते हैं या वो हमें जीते हैं? है? क्यों? कि दोनों तरह से हमारी मौत है, हम दोनों तरह से हमारी मौत है। वो हमको जीते हैं तो भी हमारी मौत है, हम उनको जीते हैं तो उनको मार करके भी हम जीना नहीं चाहते हैं। तो दोनों तरफ से हमें मौत दिखाई पड़ रही है। तो फिर अर्जुन कह रहे हैं कि जिनको मार करके हम जीना नहीं चाहते हैं वे हमारे सामने खड़े हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, कोई हल नहीं है इस समस्या का। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, युद्ध करें और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म है, या फिर वे युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करें। यदि वे शत्रु को जीतते नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उनकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उनका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में ये उनकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वे न केवल भगवान के महान भक्त थे, अपितु वे अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले थे। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उनकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वे सचमुच पुण्यात्मा थे। इस तरह ये निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य थे। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष थे। यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो मेरा लेख छपा था भगवत दर्शन में, भाग 46, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुने। इस श्लोक में अर्जुन पुनः श्री कृष्ण के समक्ष अपनी दुविधा प्रकट कर रहे हैं। यद्यपि पिछले श्लोक में उन्होंने युद्ध न करने के पक्ष में सबसे अधिक प्रबल तर्क ये दिया था कि भीष्म और द्रोण जैसे गुरुजनों की हत्या करने से अच्छा है कि वे भिक्षा द्वारा जीवन का निर्वाह करें। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था, परंतु फिर उनके मन में विचार आया कि हो सकता है कि इस युद्ध में इन गुरुजनों की हत्या ना करनी पड़े। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि यदि ये इस युद्ध में उत्साह नहीं दिखाएंगे तो वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर राज्य प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल सही है ना, ये भी हो सकता है कि युद्ध में वो रहेंगे भी और उनसे युद्ध में नहीं करना पड़ेगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके राज्य मिल जाएगा। वास्तव में यदि दुर्योधन भीष्म और द्रोण को बार बार इस बात का अवलहना नहीं देता कि उनका स्नेह पांडवों के प्रति अधिक होने से वे युद्ध में अपना पराक्रम नहीं दिखा रहे हैं, तो भीष्म और द्रोण के सामने ही धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाते तथा पांडवों को संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल गया होता। ठीक है ना, अगर वो दुर्योधन भीष्म और द्रोण के पीछे नहीं पड़ता तो क्या होता, क्या होता, उनके सामने ही धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाते और भीष्म द्रोण नहीं मारे जाते। लेकिन दुर्योधन जो है पीछे पड़ गया भीष्म की और द्रोण के, है ना, तो फिर उनको मरना पड़ा। नहीं तो दुर्योधन मरता और भीष्म द्रोण उत्साह नहीं दिखलाते युद्ध में, मरे तो मरे अच्छा है, तो उनकी भी तो इच्छा थी कि ये मरे और पांडवों को राज्य मिले, लेकिन वो पीछे पड़ गया कि आप युद्ध नहीं कर रहे, आप युद्ध नहीं उत्साह नहीं दिखला रहे, अपना पराक्रम नहीं दिखला रहे। इस प्रकार से जो है ना, तो अर्जुन ने ये सोचा कि ये संभावना है तो ठीक है, फिर ये समस्या नहीं है कि जो ना भीष्म द्रोण को मुझे मारना पड़ेगा या वो मरेंगे। इस प्रकार अर्जुन ने सोचा कि हो सकता है कि ये समस्या सुलझ जाए और उन्हें भीष्म तथा द्रोण को ना मारना पड़े। अब अर्जुन अपनी वही समस्या फिर से दोहरा रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर उन्हें सुख नहीं मिलेगा। यहां पर अर्जुन कह रहे हैं कतरन नो गरियो, अर्थात वे नहीं जानते कि उनके लिए क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन के मन में यही जिज्ञासा है कि उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन के द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वे न केवल भगवान के महान भक्त थे अपितु वे अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले थे। क्योंकि अर्जुन अभी भी इसी दुविधा में है कि क्या गरीय मतलब श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, है ना, अपने कल्याण की चिंता में है अर्जुन। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में दक्ष थे। श्रीमद् भागवत 11:29 में अवधूत ब्राह्मण ने महाराज यदु को उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में यदु महाराज को उपदेश दिया है। किसने? अवधूत ब्राह्मण ने। लब्ध्वा स दुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपि अधीनः पूर्णम यतेत न पदे तनु मृत्यु यावन नेत्रे साय विषया खलु सर्वतः स्यात्। अर्थात अनेक जन्मों के पश्चात ये दुर्लभ मानव जीवन मिलता है जो अनित होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षीण होकर नष्ट नहीं हो जाता। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राप्य है, किंतु कृष्ण भक्ति मनुष्य को ही प्राप्त हो सकती है। यहां पर अर्जुन साक्षात भगवान की संगति में अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, परंतु भगवान की संगति तो प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलती, तो क्या करना चाहिए ना? शास्त्र कहते हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को साधुओं की संगति करनी चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि उनका कल्याण किस प्रकार होगा, युद्ध में विजयी होने पर या युद्ध में पराजित होने पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन का मन कितना अधिक उनके बस में है। यद्यपि अर्जुन के पास युद्ध में विजय पाने की पूरी सामर्थ्य है, परंतु फिर भी वे सोच रहे हैं कि यदि पराजित होने में उनका कल्याण होता हो तो वे जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं। इस प्रकार की घटना श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में पृथु महाराज के चरित्र में मिलती है। पृथु महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो अर्जुन में भी वो गुण है पृथु महाराज के। जितना पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का व्रत लिया, तो इंद्र ने विचार किया कि यदि पृथु महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने की उसकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इंद्र को कहते हैं शतक क्रतु, शत क्रतु माने जैसे 100 यज्ञ किए हैं और 100 यज्ञ करने से उसको इंद्र का पद प्राप्त हुआ है। तो इंद्र क्या सोचते हैं, भाई हमारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे ये, अगर इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो हमारा रिकॉर्ड तो टूट जाएगा, फिर हमारा नाम भी तो फिर शतक क्रतु नहीं रहेगा, या हमारे नाम के 2 व्यक्ति हो जाएंगे शतक क्रतु, पृथु महाराज को भी शतक क्रतु कहा जाएगा, तो मैं अकेला फिर शतक क्रतु नहीं कहलाऊंगा। सबको अपने नाम की चिंता है, मेरा नाम किसी दूसरे व्यक्ति को भी मिल जाएगा, ये तो ठीक नहीं है भाई। तो इंद्र को जना बहुत परेशानी हुई, कीर्ति न सो जाएगी मेरी, इसलिए वह 100वें अश्वमेध यज्ञ को पूरा ना होने देने के लिए बार बार किसी न किसी साधु का वेश धारण करके घोड़े को चुरा ले जाता था। किसी भी प्रकार से 100 यज्ञ ना हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तो इंद्र जो है ना इस बात की बहुत चिंता कर रहा है, तो चुराता है, घोड़े को चुराता है। उस समय जब पृथु महाराज ने इंद्र को मार डालने का निश्चय कर लिया, तो ब्रह्मा जी ने आकर पृथु महाराज को शिक्षा दी कि वे इंद्र को ना मारे। पृथु महाराज के पास पूरी शक्ति है ना, लेकिन वो शक्ति उनके अधिकार में है, उनका मन उनके बस में है, भक्त हैं, इसलिए अपनी शक्ति का जो ना भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, और जहां आवश्यकता नहीं है तो शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आकर के पृथु महाराज को शिक्षा दी कि वे इंद्र को ना मारे। क्योंकि पृथु महाराज भगवान के महान भक्त थे, इसलिए उन्होंने उस 100वें यज्ञ को बंद कर दिया ताकि इंद्र आगे अधर्म ना करे। इंद्र अधर्म करता जा रहा है, उसका धर्म बढ़ता जा रहा है, इसलिए अच्छा है, ठीक है 100 अश्वमेध यज्ञ ना हो तो ना हो, ठीक है मुझे नाम नहीं चाहिए, नहीं तो 99 का चक्कर जानते हो बड़ा खराब होता है, 99 का चक्कर है कि, तो 99 यज्ञ किए उन्होंने, 100 यज्ञ पूरे नहीं किए, चलो ठीक है जाने दो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने व्रत लिया था और 99 यज्ञ पूरे हो गए। जानते 99 यज्ञ कितना समय में पूरे हुए, एक अश्वमेध यज्ञ पूरा करने में कितना समय लगता है, 1 साल। वो जो घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है वो पूरी पृथ्वी में विचरण करता है, उसके पीछे सेना सब राजाओं से युद्ध करती है, सब राजाओं को परास्त करती है, जो भी राजा उस घोड़े को पकड़े तब यज्ञ पूरा होता है। तो 99 यज्ञ इस प्रकार से पूरे कर लिए 99 साल में, और फिर भी 100वां यज्ञ भी पूरा हो गया। एक प्रकार घोड़ा 1 साल तक पूरे भूमंडल में विचरण करके वापस आ गया और अब केवल पूजा होनी थी। सोचो तो 100 साल तो उन्होंने पूरे कर लिए, लेकिन तो अभी 100 यज्ञ पूरे नहीं हुए ना, तो कितना मतलब किसी व्यक्ति को दुख लगेगा है कि नहीं। साल भर पढ़ाई करी और फिर जो है ना आखिर परीक्षा जो ना नहीं दी, लेकिन परीक्षा में नहीं बैठे। और व्यक्ति साल भर पढ़ाई करे और टॉप आने वाला है और परीक्षा में नहीं बैठता है तो कितना दुख होगा। वो टॉप आने वाला है, पूरे विश्वविद्यालय में उसे टॉप होने वाला है और वो जो ना परीक्षा में ना बैठ रहे तो कितना दुख होगा। तो पृथु महाराज ने जो है स्वामी यज्ञ को करने में कोई दिक्कत नहीं थी, केवल घोड़ा था और घोड़े का पूजन होना था और कुछ इस प्रकार से मंत्रोच्चारण होने थे, आहुतियां होनी थी और बस स्वामी यज्ञ पूरे हो गए होते। 99 यज्ञ पूरे हो गए, स्वामी यज्ञ भी एक साल लग गया स्वामी यज्ञ में भी है, लेकिन ठीक है बंद कर दिया। पृथु महाराज के त्याग से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान साक्षात प्रकट हुए, इतना त्याग साक्षात प्रकट हुए भगवान और बोले, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100 यज्ञों में विघ्न डाला है, अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है। अब देखो पृथु महाराज ने यज्ञ बंद कर दिया तो भगवान प्रसन्न हुए, जबकि भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति जहां उन्होंने यज्ञ को छोड़ दिया तो भगवान प्रसन्न हुए, है ना, और इंद्र को साथ में लाए पृथु महाराज से क्षमा मांगने के लिए। अतः उसे क्षमा कर दो, भगवान कहते हैं इंद्र को तुम क्षमा कर दो। इस प्रकार महाराज पृथु ने भगवान के आदेश को सिरोधार्य किया। राजा इंद्र अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ। भगवान उसको लेकर के आए, नहीं तो उसकी हिम्मत थोड़ी थी आने की पृथु महाराज के सामने। अत्यंत लज्जित हुआ और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके समक्ष गिर पड़ा, किंतु पृथु महाराज ने अत्यंत हर्षातिरेक में उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्ष्या त्याग दी। उन्हें गुस्सा नहीं आया कि अब अभी माफी मांग रहा है और कितने बार तो यज्ञ को चुरा रहा था तुम, नहीं। भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे किंतु वे राजा पृथु के चरित्र से इतने अधिक प्रसन्न थे कि वे गए नहीं। देखो भगवान यहां थोड़े आते हैं पृथ्वी में, वैकुंठ के जो भगवान है वो पृथ्वी में आए पृथु महाराज के कारण आए और अभी भी जान ही रहे हैं। क्यों? पृथु महाराज के कारण बहुत प्रसन्न है पृथु के चरित्र से। अपने कमल जैसे नेत्रों से महाराज पृथु के आचरण को देखकर वे रुक गए, भगवान रुक गए, क्योंकि वे अपने भक्तों के हितैषी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथु महाराज के समान ही अर्जुन के अंदर त्याग की भावना है। अर्जुन में किस भक्त का गुण नहीं है, सभी भक्तों के सब गुण अर्जुन के अंदर हैं। परंतु यहां पर स्थिति दूसरी है। जिस प्रकार इंद्र अपने अपराधों के कारण लज्जित था तथा क्षमा मांगने के लिए पृथु महाराज के चरणों पर गिर पड़ा, उस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं है, धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं है। जिस प्रकार भगवान ने इंद्र को अवसर दिया कि वह पृथु महाराज के निकट आकर क्षमा याचना करे, उसी प्रकार भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी समझाने के लिए गए थे, परंतु उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी। तो यह अंतर देवता असुर में, अंतर यह है, देवता भी अपराध करते हैं, असुर भी अपराध करता है, लेकिन देवता जो है क्षमा मांगने के तैयार हो जाता है, असुर क्षमा मांगने के तैयार नहीं होगा, कट जाता है लेकिन झुकता नहीं है। परंतु उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी, बल्कि भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया और अपराध के ऊपर और अपराध, चोरी कहते हैं चोरी की चोरी, ऊपर से सीना जोरी, है ना, और भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया। अतः अर्जुन के लिए उचित नहीं है कि वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को इस प्रकार अपराध करने का अवसर दें। जितना जिंदा रहेंगे उतना ही अपराध करते रहेंगे। जहां तक युद्ध में पराजित होने की बात है, श्री कृष्ण भी ब्राह्मणों के जीवन की रक्षा करने के लिए जरासंध के सामने युद्ध में जानबूझकर पराजित हुए थे। अर्जुन भी कह रहे हैं कि हम पराजित होने में अगर कल्याण है तो हम पराजित हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण भी जरासंध के सामने पराजित हुए, क्यों? जानबूझ के पराजित हुए, क्यों? ब्राह्मणों के जीवन की रक्षा करने के लिए भगवान है ना। तो जब देखते हैं भगवान की अच्छा परिणाम हारने में है तो भगवान हारने के लिए तैयार रहते हैं। जब 17 बार उसकी 23 अक्षौणी सेनाएं श्री कृष्ण के द्वारा मारी गई तो 18वीं बार मथुरा में आक्रमण करने के लिए उसने मुहूर्त बताने वाले ब्राह्मणों को बुलवाकर कहा, हे ब्राह्मणों, यदि इस बार के युद्ध में श्री कृष्ण को पराजित करके लौटूंगा तो मैं सदा आप लोगों की विधिवत पूजा करूंगा और आपके चरणों के आश्रित रहूंगा। मुहूर्त बताओ, किस मुहूर्त में हम निकले कृष्ण को पराजित करने के लिए, तो वो मुहूर्त बताओ तुम लोग। अगर कृष्ण को पराजित किया तो तुम्हारी पूजा करूंगा, जीवन भर तुम्हारे चरणों के आश्रित रहूंगा, तब तक आप लोग मेरे कारागार में रहो। कारागार में बंद कर दिया ब्राह्मणों को कि मुहूर्त बताओ तुम और हम कृष्ण को पराजित करने जा रहे हैं, तब तक कारागार में रहो। अगर जीत गए, कृष्ण को हरा दिया, तो जीवन भर आपके चरणों की पूजा करूंगा और आश्रित रहूंगा आपके। यदि हार कर लौटा तो आप सबको मार डालूंगा, ब्राह्मणों को उसने कह दिया, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार ब्राह्मणों के जीवन की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण साधारण मनुष्य जैसा आचरण करते हुए अपनी मथुरा नगरी को छोड़कर भयभीत होकर भागने लगे। कितना त्याग है, तो अर्जुन भी इसी प्रकार का त्याग प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के जीवन